الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ٹھیک ہے، ہم نے درود شریف پڑھ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ اور اس کے رسول خوش ہو گئے تو پھر کام بن گیا، اس کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس کے اندر ہم کیا پڑھ رہے تھے آپ بتائیں گے؟ اور کوئی آپ کو بتاتے رہتے ہیں؟ آپ کو بتائیں، آپ بتائیں. آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. لیکن ایک چیز انہوں نے غلط بتائی ہے، باقی تو ساری چیز ٹھیک بتائی ہے. یہ کو دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، بتائیے. جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کیا بتا رہے تھے؟ پردے کے بارے میں بات بھی ہو رہی تھی، اور آن لائن بھی ایک جواب آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ. اور بھی کچھ بتا رہے کچھ؟ ہاں، وہ ایک الگ تھا کہ پردے کے بارے میں پھر ہم نے کافی ساری بات کری تھی، اور وہ پردے کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنتے کون سی والی زینب، زینب بنت محمد بھی ہیں، زینب بنت خزیمہ بھی ہیں، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو ان سے نبی علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے شادی کر دی تھی، اوپر نیچے نہیں، کوئی نیچے کوئی نکاح وکاح کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، اوپر اللہ تعالیٰ نے شادی کر دی، اور نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ بھئی میری شادی ہو گئی ہے، زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے کہ بھئی میری آپ سے شادی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. ٹھیک ہے نا، تو صحابہ جو تھے نا وہ یہ نہیں کرتے تھے، کیسے یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے لے کر کے آ گیا. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، کسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، لیکن صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. صحابہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر پکا اعتماد کرتے تھے. ہمیں ایسا اعتماد جو ہے نا وہ کسی انسان پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، 100% اعتماد، چاہے کوئی الٹی سیدھی الٹی بات ہی جو کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی کرے پھر بھی ہم اس کے اوپر اعتماد کریں، نہیں. لیکن ہم کم از کم نبی علیہ السلام پر تو اعتماد کریں نا. لیکن ہم تو نبی علیہ السلام پر بھی اعتماد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور جو سیدھی باتیں ہیں ان کے اندر ہم اپنے علماء پہ اعتماد کرتے ہیں، اپنے مشائخ پہ اعتماد نہیں، حالانکہ وہ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں نا. تو سیدھی بات پہ تو کم ہم علماء پہ اعتماد کریں نا، اور نبی علیہ السلام کے اوپر اعتماد تو ہر قسم کی چیز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، اوپر پہنچ گئے، اس کے بعد نیچے آ گئے، پھر وہاں چلے گئے، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں ساری چیزیں حدیث مبارکہ قرآن مجید موجود ہیں، اس پہ کیوں نہیں اعتماد کرتے. اچھا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. جی ہاں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے جو قاضی صاحب تھے نا، قاضی صاحب وہ اللہ رب العزت خود تھے. ٹھیک ہے، کوئی انسان اس کا قاضی نہیں تھا، نکاح ہوا نہیں تھا. تو واقعہ جو اوور آل چل رہا ہے، اس واقعے کا ایک نام ہے، وہ آپ کو بتایا تھا ہم نے. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں عبداللہ؟ ہاں، تو اللہ کے فرشتے گواہ تھے نا. اللہ کے پاس تو بہت گواہ ہیں. ٹھیک ہے نا، گواہ کی کوئی ضروری ہے ضرورت ہے؟ جی کیا واقعہ عفق، اس پورے اوور آل واقعے کو جو ہے واقعہ عفق کہتے ہیں. عفق کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ ایک جنرل نالج کا کوشچن ہے، ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا. عفق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ उफ का मतलब नहीं हो तो हो सकता है, इफ का मतलब तो दुख नहीं होता, इफ का मतलब क्या होता है? अगर, इन्होंने लिखा है अगर, नहीं अगर भक्ति तो अगर के क्या मतलब है? क्या
इंग्लिश
ओ अच्छा अगर, ओके आई एफ इफ का मतलब पॉसिबिलिटी, अगर नहीं है वो अंग्रेजी वाले मेड अप थिंग, मेड अप थिंग भी नहीं बल्कि बोहतान, ठीक है ना, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देना और बहुत गंदा झूठा इल्जाम लगा देना, उसको इफ कहते हैं, ठीक है, ब्लेम टाइप की कोई चीज। अच्छा तो फिर हुआ ये कि जब हजरत सफवान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो आ गए ना, सफवान बिन मुअत्तल सलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु या सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो पीछे से काफले को ट्रैक करते हुए आ रहे थे, कोई चीजें गिरी पड़ी हो तो उनको उठाते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया यहाँ पर पड़ी हुई है, सो रही थी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, तो इन्होंने ना उनको पहचान लिया क्योंकि पर्दे के हुक्म से पहले तो देखा हुआ था, तो इन्होंने जो है ना वो जोर से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब दिस इज अ कैलामिटी, ये एक बहुत बड़ा, एक तो ये यानी बहुत बड़ा मसला हो गया, ये सारे के सारे लोग चले गए और एक खातून, और वो भी खातून ने जन्नत, और वो भी खातून ने यू नो रसूल अलैहिस्सलाम की इमरा, ठीक है, उनकी औरत जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, सब लोग चले गए, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया कि उन्होंने इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है मुसलमानों को, तो उनकी आवाज से ना हजरत खदीजतुल हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंख खुल गई, और उन्होंने जो है ना जैसे ही देखा कि अच्छा सफवान आए हुए हैं, उन्होंने फौरन जो है वो पर्दा कर, ठीक है ना, अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि नींद के अंदर जो है वो मुंह के ऊपर से पर्दा कपड़ा वगैरह हट भी जाता है, या एक उनको उसको ऐसी कोई नहीं थी फिक्र, नींद में हट जाता है इस तरह से। अच्छा उसके बाद जो है ना इन्होंने कोई बात नहीं करी, ना उन्होंने इनसे एक लफ्ज बात करी, ना इन्होंने उनसे एक लफ्ज बात करी, उन्होंने ला करके ऊंट यहाँ पे खड़ा कर दिया, और ये जो है ना वो ऊंट के ऊपर बैठ गई और वो लेकर के इनको चलना शुरू हो गए, और बिलाखिर चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम ने जो नेक्स्ट मकाम के ऊपर पड़ाव डाला हुआ था, रुके हुए थे वहां पर जो है ना ये दाखिल हुए, और ये वक्त क्या था, ये ऐन दोपहर का वक्त था, बिल्कुल रोशनी थी, खुली रोशनी, तो ऐसे में तो फिर कोई चीज छुपी तो नहीं रहती ना, अंधेरे में तो छुपी रहती है, उस जमाने में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो नहीं होती थी, तो अंधेरे में नजर नहीं आता था क्या हो रहा है, लेकिन रोशनी में तो फिर अल्लाह ताला की लाइट मौजूद है, तो फिर वो सबने देखा, तो अब वहां पर जो है ना वो आपको पता है कि इस वाले गजवे में या इस वाला जो सफर में एक खास बात क्या थी कि सारे मुनाफिकीन जो थे ना वो निकले हुए थे मुसलमानों के साथ, ठीक है, तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार वो भी मौजूद था इसके साथ, और भी बड़े बड़े मुनाफिकीन मौजूद थे, और ये लोग पहले ही जो है ना शदीद गुस्से में थे उस वाले वाक्य से, जो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान एक लड़ाई हो गई थी ना, शदीद उसको गुस्सा था, इसके बेटे ने भी इसके साथ किया हुआ था कि भाई तुमने अगर नहीं कहा ना, अपने बाप से कहा था, तुमने अगर नबी अलैहिस्सलाम को नहीं कहा कि वो इज्जतदार है और तुम जलील हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूँ, ठीक है, तो शदीद गुस्से में था ये शख्स, तो इसने जो देखा ना, तो इसने जो है ना वो उल्टी सीधी जो है वो उसको सही मानों में तो एक ही लफ्ज है उसके लिए, बकवास करनी शुरू कर दी। इस मौके पे हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, आपस में हम ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है ना, तो मुनाफिकों का सरदार था, काफिर था, नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, तो इसने जो है ना वो बस उल्टी सीधी जो है ना वो बकवास करनी शुरू कर दी, और इससे जो है ना इसने क्या किया कि इसने फिर हर एक से इस तरह की बातें करनी शुरू कर, लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो लोगों ने भी बातें शुरू कर दी, क्या बातें शुरू कर दी, ये बातें शुरू कर दी कि ये आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन और सफवान रजी अल्लाह तआला अन, ये दो लड़का और लड़की, ये दोनों अकेले कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के आपस में कोई फ्रेंडशिप हो गई, इन दोनों के आपस में कोई ताल्लुक बन गया है, इसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी, ठीक है ना, ये एक बुरी चीज थी, किसी लड़के का किसी लड़की के साथ जब कोई महरम वाला रिश्ता नहीं है, ठीक है ना, भाई बहन वाला रिश्ता नहीं है, माँ बेटे वाला रिश्ता नहीं है, या कोई और महरम वाला रिश्ता नहीं है, व्हाई आर यू अलोन, आप क्यों अकेले हैं, ये इस वक्त शैतान ने और काफिरों ने इस वक्त इस चीज को जो है ना बड़ा नॉर्मल बना दिया है, कोई मसला कोई नहीं है, लड़का लड़की जो है वो साथ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, है ना, ये तो है ना उनकी मर्जी, एनु की नहीं, क्या एनु की नहीं, मैनु की, ठीक है ना, मुझे क्या, उनकी मर्जी नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखें इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इसी वजह से तो अब्दुल्ला बिन उबई ने इसको जो है वो बड़ा इशू बनाया ना, इसी वजह से तो उसने इस तरह की बातें करनी शुरू करी। ठीक है, वरना तो उसको क्या जरूरत थी भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है भाई आ रहे हैं आ रहे हैं, हु केयर्स, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसने जो है वो बहुत ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा, दूसरी तरफ इसकी सिवियरिटी मजीद देखें, सिवियरिटी समझते हैं, किसी बात की शिद्दत, सख्ती, अहमियत, इस बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, सारे के सारे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी, और जो सामने बैठे हुए वो भी, कितनी सख्त बात थी ये कि आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ये बात कही जाए कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ, जो कि महरम नहीं था, उसके साथ जो है वो अकेली थी। कितनी सख्त बात थी ये, सोच लें इस बात को। ठीक है ना, आगे वाक्य को सुने। तो हुआ ये कि आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या पता कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो आपस में कर रहे थे बातें, सफवान रज़ियल्लाहु अन्हा को भी नहीं पता होगा या बाद में पता चल गया होगा। खैर, काफिला जो है फिर वहां से उठा और बिलाखिर चलते चलते जो है ना वो मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अच्छा, अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना वो वापस पहुंच करके बीमार हो गए। ठीक है, बीमार होने के बाद जाहिर है फिर उसके बाद आप अपने घर के अंदर रहते हैं और से का तो बुखार हुआ हुआ है, आपको कोई और प्रॉब्लम हुई भी है, तो ये बीमार थी और ये बताती हैं कि मैं पहले भी बीमार पड़ चुकी थी। ठीक है, लेकिन पहले जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास आते थे और मुझसे मेरी खैरियत पूछते थे कि आयशा कैसी हो, तबीयत कैसी है, दवा ले ली वगैरह, इस तरह की बातें करते थे। ठीक है ना, लेकिन इस दफा जो मैं बीमार पड़ी ना, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मुझसे आके की बात ही नहीं कर रहे, मुझसे आके जो है वो खैरियत ही नहीं पूछ रहे। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, ये क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन चले, हो सकता है नबी अलैहिस्सलाम मसरूफ होंगे, कोई दूसरा जो है वो जिहाद का मसला आया हुआ होगा, कोई और साजिशें हो रही होंगी काफिरों की, नबी अलैहिस्सलाम इज टू बिजी, इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रहे। तो आयशा सिद्दीक ने ज्यादा इसको अहमियत नहीं दी इस बात को। ठीक है, तो हुआ ये कि आयशा सिद्दीक जो है वो इस तरीके से अपने रोज शब गुजार रही थी, दिन गुजर रहे थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा होगा ना, जैसा आपको बताया कि उस जमाने में घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे। ठीक है ना, कोई पाइपलाइन का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम, ये सारी चीजें तो बहुत बाद में जाकर के बनी है। अभी भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में भी कुछ जगह ऐसी हैं, वहां पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे डोंट हैव टॉयलेट्स इन देयर हाउसेस, घरों में टॉयलेट्स नहीं है। तो वो दूर जा करके, आज भी जो है ना वो बहुत दूर जा करके वही डेफिकेशन जो है वो उसके लिए अलग अलग मुकाम आता नहीं, वही चोर छुपे जा करके कहीं पे किसी की ओट में, फिर उस जमाने में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। तो बहरहाल, तो एक दफा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को इसी तरीके से अदाए हाजत के लिए जाना था, तो वो निकली ना तो साथ जो है वो किसी खातून को लेकर के भी निकलते थे। ठीक है, जब कोई अवेलेबल है तो भाई आप साथ चले, आप अगर आपको भी जरूरत है। तो इनके साथ जो है ना वो एक सहाबिया थी जिनका नाम था उम्मे मिस्ताह रजी अल्लाह तआला। ठीक है, ये उम्मे मिस्ताह रजी अल्लाह तआला जो थी ना, ये आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला से रिलेटेड थी, इनका रिश्ता था आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला से। किस तरह से कि उम्मे मिस्ताह का मतलब क्या है, मिस्ताह की अम्मा। ठीक है, मिस्ताह एक सहाबी थे, मर्द सहाबी मिस्ताह, उनकी वालदा थी, तो इनको उम्मे मिस्ताह इनकी कुनिया थी। कि उम्मे मिस्ताह जो थी ना, इनकी जो अम्मी थी वो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा अन की खाला थी। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ग्राफ बना करके समझूं तो शायद समझ में आ जाए। यानी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के जो अब्बू थे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन की जो खाला थी, यानी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की दादी बनी। ठीक है ना, खाला दादी बनी, दादी खाला बनी जो भी। तो उम्मे मिस्ताह की वालिदा थी आयशा सिद्दीका ताना की दादी खाला। ठीक है, खाला दादी, तो ये रिलेशनशिप थी इनकी। तो जी आप क्या पूछ रहे हैं, अम्मी की बहन थी, खाला कौन होती है, अम्मी की बहन होती है। ठीक है, अच्छा बहरा, तो उम्मे मिस्ताह रजान जो है ना इनके साथ थी। तो जब ये लोग जा रहे थे ना, तो अब अंधेरे में कम लाइट होती है, तो उनको जो है ना वो सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो उनको नजर नहीं आया, उम्मे मिस्ताह को जो भी चीज थी, उनका जो है ना वो पैर उससे टकरा गया और ये जो है ना वो गिर पड़ी, उम्मे मिस्ताह जो है ना वो ठोकर लग कर गिर पड़ी। अब जब इस तरह से कुछ होता है ना, तो फिर अक्सर लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ कहते हैं, क्या मुसीबत है, उफ़ो, इस तरह की कोई चीज कहते हैं ना। तो इन्होंने जो है ना इस ठोकर लगने के ऊपर कहा कि अल्लाह जो है ना मेरे बेटे को बर्बाद कर, इस तरह की कोई, मतलब ये अल्फाज एग्जैक्टली नहीं मुझे मुझे याद नहीं है और किताब में लिखा हुआ भी नहीं है मेरी, लेकिन इस तरह की बात कही कि इन्होंने ना अपने बेटे मिस्ता को जो है ना बुरा भला कहे, कोई बुरा कोई बात नहीं, मिस्ता जो है ना बर्बाद हो जाए, मिस्ता यानी शी वॉज वेरी, क्या कहते हैं ना, वो गुस्से में थी अपने बेटे बेटे से, नाराज थी अपने बेटे से, तो इस वक्त जो है ना उनके दिल से वो बात निकल आई, मुंह पे आ गई जी,
नाराज
वो नाराज क्यों थी, अभी यही तो है ना, वो नाराज क्यों थी। तो जब आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे ये बात सुनी ना, तो मैंने कहा आप क्यों अपने बेटे को इस तरह से बुरा भला कह रही हैं, आपका बेटा तो बदरी सहाबी है, राइट, वो तो गज़वा बदर के अंदर शामिल था, और गज़वा बदर में तो जो भी शामिल था अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुज़श्ता और जो फ्यूचर में अगर वो कोई गुनाह करेगा ना, अल्लाह ताला ने उसको भी माफ कर दिया है। गज़वा बदर इतना बड़ा गज़वा था, इतनी बड़ी मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी कि आप सबने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके फ्यूचर के गुनाहों को भी माफ कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे एक सहाबी को जो कि आपके बेटे हैं और आप जो है वो इतना बुरा भला कह रही हैं, तो उसमें ना उम्मे मिस्ता ने जवाब दिया, आयशा तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं पता व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है ना, व्हाट्स द ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन कहते हैं उसको, टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है। तो आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो उम्मे मिस्ता रज़ियल्लाहु अन्हा ने ना उनको बता दिया कि ए भोली भाली बच्ची, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी ना आयशा सिद्दीक ने, तो उनके ऊपर जो है ना जैसे कहते हैं ना उर्दू के अंदर बिजली गिरी, ठीक है ना, इट वॉज ए शॉक टू हर, तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई पहले से। जब सख्त किस्म की टेंशन होती है ना, तो कुछ लोगों को तो बुखार नहीं होता तो उनको बुखार हो जाता है, तो इनको तो पहले से बुखार था, तो इनका तो बुखार और भी ज्यादा बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा वो टेंशन में आ गई, और एक रिवायत में है कि उनके ऊपर जो है ना वो लर्जा चल, यानी कांपना शुरू हो गई, ठीक है, ठंडक लगनी शुरू हो जाती है, बुखार चढ़ता है तो उस वक्त कांपना शुरू हो गई। अच्छा, एक हदीस के अंदर, एक रिवायत के अंदर है कि हजरत आयशा सिद्दीक ने फरमाया कि जब मैंने ये वाकया सुना था, सुना ना कि मेरे बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं वगैरह, तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी कुएं में जाकर के ना, किसी वेल में जाकर के अपने आप को गिरा दूं और खुदकुशी कर दूं, ठीक है ना, अपने आप मैं सुइसाइड कर लूं, मार दूं अपने आप को, लेकिन ऑफकोर्स वो हराम है तो उन्होंने किया तो नहीं, लेकिन दिल में ऐसी कैफियत, इमेजिन करें कितनी सख्त बात थी ये कि इस तरह से किसी मुसलमान औरत के बारे में बात की जाए कि वो किसी गैर लड़के के साथ जो है वो अकेली देखी गई है, क्या रीजन थी ये सारी बातों का, यही था ना कि गैर लड़के के साथ अकेली देखी जा रही, ठीक है ना। तो इनको इतना दुख हुआ इस बात के ऊपर कि इनका सुइसाइड करने का दिल चाहना शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये तो गई थी ना कजाए हाजत के लिए, तो वहां से अब जब ये वापस आ रही थी ना, तो घर पहुंची, बुखार जो है वो और तेज हो गया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो फिर ना नबी अलैहिस्सलाम इनसे मिलने के लिए आए घर में, ठीक है, इनका जो हिजरा था आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा, जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम आज पर्दा यानी आराम फरमा रहे हैं, तो उस घर में आपसे सलाम आए, तो आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने ना आपसे सलाम से कोई बात नहीं करी, बस इतना कहा कि मुझे अपने अम्मी अब्बू के घर जाने की इजाजत दे दीजिए, ठीक है। इनके दिल में यह था कि मैं जरा तफसील तो मालूम करूं, जो उम्मे मिस्ता ने मुझे बताया कि वाकई सच है, उम्मे मिस्ता कहीं शी इज नॉट डे ड्रीमिंग तो नहीं कर रही हो कहीं, ठीक है। तो देखिए इस तरह की कोई बात होती है ना, जो कि तो दिल में तो गम होता है, लेकिन जो अकल वाले होते हैं ना, समझ वाले होते हैं, आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा कितनी समझ वाली थी, पूरा काफिला छोड़ करके चला गया और चिल्लाना चीखना नहीं शुरू कर दिया उन्होंने, है ना, खामोशी के साथ जो है वो लेट गई, सो गई, है ना, कितनी अकलमंद थी, भागना दौड़ना नहीं शुरू कर दिया, रास्ता भूल जाती, लोग आते मिलती नहीं, पता नहीं क्या से क्या हो जाता, अल्लाह ताला ने इतनी जहानत अता फरमाई थी इनको, तो वही जहानत दोबारा इस्तेमाल कर रही है कि लेट मी कंफर्म द न्यूज, ठीक है ना, लेट मी कंफर्म द न्यूज कि गलती तो नहीं हो गई कहीं उम्मे मिस्ता को इस बारे में कोई, ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे
मदीना।
जी, मदीना मुनव्वरा पहुंच गया था, ठीक बताया था, दादी की भांजी, अच्छा जी, बैठ करके ना वो उसको वो कर रही थी, दादी की भांजी बनती है। अच्छा, तो नबी रसूल ने इजाजत दी कि हाँ भाई ठीक है, आप अपनी अम्मी अब्बू घर चले जाएं, ठीक है ना। तो पर्दे का दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उस पर्दे को कौन सा वाला पर्दा कहते हैं जब घर से बाहर निकलना होता है, हिजाब, हिजाब बिल बुरका, ठीक है ना, बुरका। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जिस जमाने में बड़े हो रहे हैं ना, तो इस जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे मशायख को जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने इतनी मेहनतें करी, इतनी मेहनतें करी कि जिसकी वजह से अब ये लफ्ज बुरका जो है ना ये एक्सेप्टेबल हो गया है हमारे सोसाइटी के अंदर। पहले पता है ये लफ्ज बुरका जो है वो कैसा था है? जब हम छोटे थे, आपकी उम्र के थे, ये बुरका लफ्ज ऐसे था जिसको उर्दू में कहते हैं गाली देना, ठीक है ना, या इंतहाई गंदे लोग होते हैं ना, घटिया किस्म के लोग होते हैं वो बुरका पहनते हैं, ठीक है ना। तो लफ्ज बुरका जो था ना वो एक स्वेयर वर्ड टाइप की चीज थी, एक गाली टाइप की चीज बन चुकी थी, ठीक है ना। अल्लाह का शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत जी मौलाना हकीम अख्तर रहमतुल्लाह, बहुत सारे दीगर मशाइख, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, दांतों को सोना छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, सारी दुनिया के अंदर उन्होंने सफर किए, जगह जगह जाकर के लोगों से बातें करी, बयानात किए, लोगों को समझाया, पर्सनल टाइम दिया सबको, ये सारी मेहनतें करके उन्होंने एक बहुत बड़ा लोगों का तैयार कर लिया है कि जो लोग खुद बुरका करते हैं, जो खवातीन खुद बुरका करती हैं, पहनती हैं, या ये कि अगर नहीं भी पहनती तो उसको गंदा नहीं समझते, बुरा नहीं समझते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, उन्होंने जो इतने सारे लोगों को दीन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया है ना अपनी मेहनतों से, हमें इन लोगों को दीन के अंदर रखने की मेहनत करनी, वरना शैतान मुस्तकिल इस मेहनत में लगा हुआ है इन लोगों को वापस ले जाए, अपनी तरफ वापस लेकर के चला जाए, फिर वैसे ही बना दे जैसे पहले, ठीक है। ये मेहनत शैतान की हो रही है और हमारी मेहनत क्या है, हमारी मेहनत यह है, ये है कि हाउ टू कीप दीज पीपल पीपल इन द इन द दीन, ठीक है। इस बात को समझ लें तो फिर इंशाल्लाह आपकी मेहनत का फिर कोई फायदा भी होगा, वरना मेहनत कुछ और करनी थी, कर कुछ और रहे, ऐसी मेहनत का फायदा ही होता ना, ठीक है ना। तो जहां मेहनत की जरूरत है पहले तो हमें सीखना है, समझना है कि हमें किस मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे आप मेहनत कर ही नहीं सकते, टाइम जाया करेंगे अपना और दूसरे का भी। बच्चों के लिए बात करने मुश्किल होगी समझना, लेकिन बहुत सारे बड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ जाए इस बात को, अल्लाह करे, ठीक है। तो इस बात की मेहनत करनी है, हाउ टू कीप द पीपल इन द दीन, ठीक है। बहरहाल तो जब ये हिजाब बिल बैत से बाहर निकली, हिजाब बिल बैत थी ना, अपने घर के अंदर थी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है ना, अपने अम्मी अब्बू के घर जाने के लिए निकली, ठीक है ना। भाई जाना था, अम्मी अब्बू से मिलना होता है, ये एक जरूरत होती है, ठीक है ना, ये कोई मजबूरी नहीं थी इनके अम्मी अब्बू से मिलना, जरूरत थी, जरूरत के लिए भी घर से बाहर जा सकते हैं, खवातीन जाती हैं जरूरत से बाहर, लेकिन हिजाब बिल बुर्का के साथ जाना, ये शरीयत का हुक्म है, ठीक है। तो ये कहकर अपने अम्मी अब्बू के घर पे गई और वहां पे जाकर के ना इन्होंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी आपको कुछ मालूम है कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अम्मी ने ना इनकी जवाब दिया कि बेटी तुम गम ना करो, तुम रंजीदा ना हो, फिक्र ना करो, देखो ये तो होता रहता है दुनिया के अंदर, जो औरत होती है ना जो कि अपने खाविंद की, अपने शोहर की जो है ना, वो बड़ी बिलवड होती है, शोहर उससे मोहब्बत करता है और वो बहुत खूबसूरत होती है और अच्छी सीरत यानी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर होती है ना, तो अब लोग जो है ना वो हसद में मुबतला हो जाते हैं, उससे हसद करना शुरू हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से ना ऐसी जो लोग होते हैं ना हसद करने वाले, तो फिर वो उसके बारे में बुरी बुरी और झूठी झूठी बातें फैलाना शुरू कर देते। अम्मी ने ना उनकी इस तरीके से उनको तसल्ली देने की कोशिश करी ताकि उनका गम जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। उन्होंने झूठ नहीं बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठ हो जाता ना भाई, था एक बहुत बड़ा मसला, लेकिन उन्होंने इस तरीके से उस मसले को टोन डाउन करने की कोशिश करी, ठीक है। तो इन्होंने जब कहा ना कि लोग जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं, तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को ये बात तो समझ में आ गई कि इसका मतलब ये है कि कोई एक बंदा इस तरह की बात नहीं कर रहा, दो बंदे इस तरह की बात नहीं कर रहे, बल्कि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है। उन्होंने कहा अम्मी क्या इस तरह की बात का लोगों में चर्चा हो गया है, यानी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो अम्मी ने कहा हाँ ऐसा ही है। तो ये सुनकर के ना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी चीखें निकल गई, वहां पे चीखें नहीं निकली थी, यहां पे चीखें निकल गई, क्योंकि वो जो कैलामिटी थी ना वो कैलामिटी छोटी कैलामिटी थी, वो छोटी मुश्किल थी, और ये मुश्किल जो थी ये उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल थी। इस मुश्किल के मौके पर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी कंपोज्ड पर्सनालिटी, ऐसी अकलमंद खातून, इनकी भी चीखें निकल गई, ठीक है ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो उस वक्त घर की फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यानी ऊपर वाली फ्लोर के ऊपर जो है ना बैठे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। ठीक है, उस जमाने में भी सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, उससे ज्यादा नहीं होती थी। तो उन्होंने जब अपनी बेटी की चीखें सुनी तो वो नीचे आ गए। ठीक है, तो इन्होंने फिर अपने वालिद से पूछा कि अब्बू क्या अम्मी जो कह रही है ये बात सही है? तो नहीं, उन्होंने वो नीचे आए और उन्होंने ना इनकी अम्मी से दरियाफ्त किया कि क्या हो गया आयशा को, क्यों चीखें मार रही है आयशा, क्या हो गया उसको, क्यों रो रही है? तो अम्मी ने बता दिया उनको कि भाई इसको जो है ना वो खबर हो गई, अब तक उसको खबर नहीं थी। ठीक है ना, ये बात सुन करके हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रोना शुरू हो गया कि मेरी बेटी को इतना दुख पहुंच रहा है और लोग उसकी बेटी के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं। आप तस्वर करें, अबू बकर सिद्दीक जो थे ना इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, इतने सख्त और पक्के आदमी थे कि जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था ना, दुनिया से चले गए थे, इससे बड़ा दुख और सदमा दुनिया में कभी किसी को नहीं मिला। इससे बड़ा दुख दुनिया में कभी हुआ ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए। सारे सहाबा बिल्कुल परेशान हो गए थे। आप पता ना उमर फारूक ने क्या किया था, नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से चले गए थे उमर फारूक तलवार लेकर के बाहर निकल आए थे। किसी ने अगर कहा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, मैं इस तलवार से उसकी गर्दन मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं, यानी इसको कहते ना साइको हो जाना। ऐसे हो गए थे साहबा, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कहीं जो है वो कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई इधर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले, उस वक्त सिर्फ अबू बकर सिद्दीक थे कि जिन्होंने पूरी उम्मत को संभाला था, पूरी उम्मत को संभाला था। इमेजिन करें कितने पावरफुल इंसान हों। फिर उसके बाद जब बड़े बड़े फितने शुरू हुए थे कि ये मुसैलमा का अज़ाब खड़ा हो गया कि मैं हूं अल्लाह का नबी, अब लोग जो है वो मेरे ऊपर ईमान लेकर के आए, और हजारों लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये जो वादी गोनी पर है, यहीं पर तो था ना गोनी वो मुसलमान का था, हजारों लोग उसके साथ हो गए, मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया। और दूसरी तरफ जो है वो एक कबीले ने कहा हम जकात नहीं देंगे, हम मदीना मुनव्वरा को जकात नहीं देंगे, हम बस अपनी तरफ से जकात देंगे और अपने उसको इस्तेमाल कर लेंगे, अपने गरीबों में उसको बांट लेंगे। ऐसे मौके पर सारे सहाबा ये कह रहे थे अभी छोड़ दें इन लोगों को, अभी हम लोग जो है वो बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए और हम जो है ना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इन लोगों से जो है वो लड़ाई करें और इन लोगों को यानी सजा दें उसकी, उनके इर्तदाद के ऊपर, उनके मानीन ज़कात दो, हम नहीं कर सकते इस वक्त। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे उस वक्त जिन्होंने फरमाया नहीं, मैं लश्कर भेजूंगा और इन सब से मैं लड़ाई करूंगा, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, हत्ता कि अगर जो जकात देने के इनकार करने वाले लोग हैं ना कि हम जकात जो है वो मदीना मुनव्वरा नहीं भेजेंगे, अगर उन्होंने एक रस्सी भी भेजने से मना किया ना कि हम इस एक रस्सी को जकात में नहीं अदा करेंगे, हालांकि उसको अदा करना जरूरी है, मैं उनसे भी लड़ाई करूंगा, है ना, मैं उनसे भी लड़ाई करूंगा। उमर फारूक दौरान मशवरा दे रहे थे कि नहीं नहीं अभी लड़ाई करने का टाइम यहाँ। उमर फारूक कितने सख्त इंसान थे, कितने जबरदस्त इंसान थे, वो मशवरा दे रहे थे कि नहीं नहीं अभी नहीं लड़ाई करनी चाहिए। और अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मैं लश्करों को भेज दूंगा अगरचे के मदीना मुनव्वरा में हमारे बच्चों और औरतों की हिफाजत करने वाला कोई भी पीछे ना रहे और जंगल के जानवर आकर के हमारे बच्चों को नोच करके ले जाए ना, फिर भी मैं लश्कर भेजूंगा, फिर भी मैं इस्लाम का लश्कर जो है वो इन लोगों से लड़ने के लिए भेजूंगा। उमर फारूक फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने जो है ना उस वक्त नबूवत के दर्जे की हिम्मत दिखाई थी, नबूवत के दर्जे की, जैसे नबी को अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देते हैं ना, वही आती है जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, वैसी हिम्मत जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिस्प्ले करके दिखाई थी। और फिर आपको पता है लश्कर इधर भी गया, लश्कर उधर भी गया, सबको जो है मुसलमानों ने शिकस्त दी और अल्लाह ताला ने इस्लाम की हिफाजत फरमाई, मदीना मुनव्वरा में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करने वाले थे, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी थे, लेकिन बेटी के मामले की वजह से जो है ना ये भी रोना शुरू हो गया। ठीक है, ये होता है, इससे वजह से ना हमारे मशायख जो है ना वो दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह आप हमें औलाद के गमों से महफूज, औलाद के गम क्या चीज होता है, इसको कहते हैं औलाद का। ठीक है, औलाद जब किसी बुराई में पड़ जाती है या औलाद के खिलाफ जो है जब इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती हैं ना, माँ बाप इस गम को संभाल नहीं सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे जैसे भी हिम्मत वाले। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप को जो है ना कोई गम देने का सबक ना, ठीक है ना, इस तरह का गम देने का सबक। ये नहीं कि वो गुनाह के लिए कह रहे हैं और शिर्क के लिए कह रहे हैं तो आप उनको गम ना दें और शिर्क करना शुरू हो जाए, गुनाह करना शुरू हो जाए, ये नहीं। लेकिन कोई ऐसा गंदा काम ना करें, कोई ऐसी बात ना करें कि जिसकी वजह से वो गम का शिकार, ठीक है, वो इसका इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रतान की आंखें बह पड़ी और आयशा सिद्दीक रतान फरमाती है कि मुझको इतनी शिद्दत का लर्जा आया कि मैं, यानी इतना ठंडक लगनी शुरू हो गई, मैं कांपना शुरू हो गई और ज्यादा, कि फिर मुझे लिटा दिया मेरी अम्मी ने और मेरे ऊपर ना घर के सारे कपड़े ला करके मेरे ऊपर डाल दिए। जब बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो एक ब्लैंकेट से काम नहीं होता, दो ब्लैंकेट डालते हैं, तीन ब्लैंकेट डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी, एक लम्हे के लिए मेरे आंसू नहीं थमते थे, इसी तरह सुबह हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये मामला चल रहा था, लोग बातें तो कर रहे हैं बाहर, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इधर आयशा सिद्दीक रतान की तबीयत भी खराब है और अबू बकर सिद्दीक रतान भी गमजदा है, उनकी अहलिया भी गमजदा है, नबी अलैहिस्सलाम साहब भी परेशान है कि मैं क्या करूं। वही नहीं आ रही, जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर के नहीं आ रहे। देखिए अल्लाह ताला कैसे आजमाते हैं, कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई है लेकिन ऊपर से वही नहीं आ रही। ठीक है, अल्लाह ताला तो देख रहे ना सब कुछ, पता है अल्लाह ताला को क्या हो रहा है, कौन सच है कौन गलत है, फौरन से वही आ जाती, मसला खत्म हो जाता, अल्लाह ताला ने वही को रोका हुआ है। ठीक है ना, इसको कहते हैं आजमाइश, टेस्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला, मुसलमानों को टेस्ट कर रहे हैं, काफिरों को जो है ना और ज्यादा और करो तुम गुनाह, मैं तुम्हें एक साथ ही पकड़ूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं उसके बाद। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम की भी यानी एक मुश्किल आई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ठीक, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर एक बड़ी जबरदस्त बात करी, अल्लाह का हुक्म माना। ठीक है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था पिछले मौके के ऊपर, उहद के मौके के ऊपर, है ना, कि आप इन लोगों को माफ कर दीजिए, वशाविरहुम फिल अमर, और इनसे ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर ना आप मशवरा किया करें, अपने छोटों से मशवरा किया करें। नबी रसूलुल्लाह सल्लम सबसे बड़े इंसान, उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, बाकी जितने साहब हैं वो छोटे हैं। ठीक है ना, तो छोटों से मशवरा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हुक्म की अताअत करी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बुलाया मशवरे के लिए, सिर्फ अपने से थोड़े छोटे को नहीं, सबसे छोटों को बुला लिया, क्योंकि वो जो सबसे छोटे थे ना वो इस मुआमले को जानने वाले लोग थे। ठीक है ना, वरना तो उमर फारूक रतान जो थे वो उनकी बारी, ठीक है, वो बगैर सिद्दीक रतान से मशवरा ना करते, भाई उनकी तो बेटी का मसला है तो उनसे मशवरा नहीं कर रहे, तो उमर फारूक रतान से मशवरा कर लेते, उस्मान गनी रतान से मशवरा कर लेते, अबू उबैदा रतान से मशवरा कर लेते, तलहा और जुबैर रतान से मशवरा कर लेते। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरे के लिए किसको बुलाया, जो के घर के हालात से वाकिफ थे, अकल इस्तेमाल करना। ठीक है ना, जो बात है उस बात के जानने वालों से पूछो ना उसके बारे में, ठीक है ना, जिसको पता नहीं है उस मसले का उससे तो मशवरा करके क्या करोगे भाई। ठीक है, तो उसामा रजी अल्लाह ताला जो कि जूनियर साहबी थे, जैद रतान के बेटे, बहुत छोटे से थे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे, टीनेज उम्र में थे, तो उनको बुलाया मशवरे के लिए, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला को बुलाया जो भी एक जूनियर साहबी थे। ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे कजन थे ना, जूनियर कजन, तो उनको बुलाया। उसामा रजी अल्लाह तआला से भी पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा रजी अल्लाह तआला के बारे में। ठीक है, तो उसामा रजी अल्लाह तआला जो थे ना, ये थे, मोहब्बत तो सारे साहब ही करते थे, उसामा रजी अल्लाह भी मोहब्बत करते थे, लेकिन उसामा रजी अल्लाह तआला की खास स्पेशलिटी क्या है, उनकी स्पेशलिटी जो है ना वो ये है कि वो एक तो छोटे थे, घर के अंदर होते थे, जब हजरत जी फरमाते हैं जब बहुत, मैं जब बहुत छोटा था ना तो मेरे पास हर घर का मल्टीपल एंट्री वीजा था, समझते, क्योंकि छोटे बच्चे के ऊपर पर्दे की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो कभी इस आंटी के घर में जा रहे होते हैं, कभी इस आंटी के घर में जा रहे होते हैं, कभी इस आंटी के घर में जा रहे होते हैं, उसको कहा मल्टीपल एंट्री वीजा। ठीक है, तो उसामा रहता ना जब उससे चंद साल पहले, उनके बाद भी मल्टीपल एंट्री वीजा था, इस घर में जा रहे हैं, इस घर में जा रहे हैं, पर्दे वर्दे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो उनकी ये खास बात थी कि उनकी उम्र छोटी थी, दूसरी उनकी खास बात ये थी क्योंकि बाद में बड़े हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको एक फौज का सिपे सलार बनाया। ठीक है ना, जिस फौज को फिर रवाना करना था, फिर आप सब का इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक रतान ने उस फौज को इंतकाल के बाद भी रवाना किया। ठीक है, यही वाली वो फौज थी बहरहाल। तो उसामा रतान की ये खास बात थी, उनसे मशवरा किया तो उन्होंने जो है ना वो जवाब दिया कि अहलुका या रसूल अल्लाह, ये जो आयशा सिद्दीक रहा है ना, ये तो आपके घर की है ना, आपके घर की यानी आपके खानदान वाली है, आपकी फैमिली है, ये आपकी अहल है। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला ने आपके घर वालों को तो आपके शान के मुताबिक ही पसंद किया है ना। ठीक है ना, आप सबसे अफजल, सबसे सबसे अरफा, सबसे आला, सबसे अल्लाह ताला के दादा मोहब्बत करने वाले, तो जो आपके घर वाले हैं वो भी आपके हिसाब से ही होंगे ना, वो भी अच्छे लोग होंगे ना, वो भी जो है वो पाकीज़ा लोग ही होंगे ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात को कंफर्म भी कर दिया, उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु वाली बात, जो आयात नाजिल हुई वो बाद में नाजिल हुई है। क्या आयत नाजिल हुई, सूरह नूर की आयत है?
नहीं,
पूरी वाली नहीं, ये वाली बात, नेकों के लिए नेक, अल खबीस अल खबीसात लिल खबीसीन, जो खबीस लोग होते हैं ना उनके लिए खबीस औरतें होती हैं। ठीक है ना, बुरे लोग उनके लिए बुरी औरतें होती हैं, वल खबीसून लिल खबीसात, और जो खबीस मर्द होते हैं उनके लिए वो खबीस औरतों के लिए होते हैं। ठीक है ना, वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन, है ना, और जो तय्यब औरतें होती है ना, पाकीजा पाकीजा औरतें होती है ना, वो पाकीजा मर्दों के लिए होती हैं, राइट। और दूसरी तरफ भी वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, और जो पाकीजा मर्द होते हैं ना वो पाकीजा औरतों के लिए होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा पाकीजा तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो अल्लाह ताला ने जिसकी शादी आपसे करवाई है, अल्लाह का हुक्म है, ये वो वाली शादी नहीं थी जो ऊपर हुई थी, ये तो बाकायदा निकाह हुआ था दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला किसी नापाक, किसी गंदे अखलाक वाली, किसी गंदे किरदार वाली, क्योंकि ये गंदा काम है ना, आप किसी नॉन महरम मर्द के साथ क्यों इधर उधर घूमती फिर रही है, ये गंदा काम है, तो ऐसा करने वाली जो है वो गंदी औरत होगी। ठीक है ना, बाद में तौबा कर ले तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देते हैं, ये नहीं कि तौबा करने के बाद भी माफ नहीं करते, तौबा के ऊपर माफ करते हैं, तौबा से बगैर नहीं। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला किसी गंदी औरत को आपके लिए कैसे पसंद कर सकते हैं ना। अच्छा, आयशा सिद्दीका रहा तआला अन्हा का निकाह भी आपको पता है ना कैसे हुआ था, यानी निकाह की तरफ नबी अलैहिस्सलाम सलाम को बात कैसे हुई थी, निकाह की नबी अलैहिस्सलाम सलाम को
बिजनेस
बिजनेस, वो खदीजा तुल कुबरा रहा तआला अन्हा थी, आयशा सिद्दीक रहा तआला अन्हा की कैसे शादी हुई थी? फरिश्ता एक तस्वीर लेकर के आया था ना, तस्वीर की ना, आयशा सिद्दीक रजील तआला अन्हा की तस्वीर लेकर के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता भिजवा करके ना फिर नबी अलैहिस्सलाम को शादी के लिए फरमाया था कि भाई इनसे शादी कर। ठीक है, तो अल्लाह ताला कैसे किसी ऐसी गलत किस्म की औरत की आपसे शादी कर ले। ठीक है, तो उसामा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये जवाब दिया, और उन्होंने साथ से ये भी कहा कि वमा नअलमु इल्ला खैरा, मैं इन हम जो है हम लोग, मतलब सिर्फ अपनी बात नहीं कही बल्कि कहा हम लोग जो है ना, वो आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में सिर्फ अच्छा जानते हैं, हमने इनके बारे में कभी बुराई नहीं देखी, हम नहीं जानते इनके बारे में कोई बुराई। ठीक है, तो नबी अलैहि सलाम ने ये मशवरा सुन लिया उसामा रज़ी अल्लाह ताला। उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हजरत अली करमल्लाहु वजहहू, अपने छोटे कजन, ठीक है, लिटिल ब्रदर, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आयशा सिद्दीका कारण के बारे में जो बातें चल रही हैं, तो तुम्हें पता है इनके बारे में, तो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या मशवरा है इस मामले में, अली रजी अल्लाह तआला की क्या खास बात थी, ये भी आप बता दें, अली रजी अल्लाह की क्या स्पेशलिटी थी, खसूसियत थी, उनकी स्पेशलिटी बता दी ना कि वो छोटे थे, घर में मल्टीपल एंट्री वीजा था, और बाद में अली रतान की क्या खास बात,
बेटी
बेटी से शादी थी, लेकिन बेटी से शादी का इस वाक्य से आप बताइए, बहुत बहादुर थे, लेकिन यहाँ पर भाई कोई जंग थोड़ी लड़नी थी। जी,
रिलेटिव
थे, नहीं उनके तो रिलेटिव नहीं थे, बहुत दूर की रिलेशनशिप बनती है आयशा सिद्दीका, ड्रीम ऑफ हजरत आयशा इन वेल, हाँ वेल में ऐसा तस्वीर आई थी, अली रजा नबी अलैहिस्सलाम के दामाद थे, मैटर ऑफ द फैक्ट अप्रोच थी उनकी, सबसे पहले ईमान लाए थे, नहीं सबसे पहले बच्चों में ईमान लाए थे। हाँ, इन्होंने सही जवाब दिया है कि वो इल्म के बाप थे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बाप लिख दिया है उन्होंने, लेकिन जो हदीस मुबारक है वो क्या है, अना मदीनतुल इल्म, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, वह अली बाबुहा, और अली उस शहर का बाब है, दरवाजा है, अली इज द वे टू एंटर दैट सिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो तो अली हजारों को नबी रसूल ने क्या फरमाया, नॉलेज, उनके पास इल्म था, और इल्म भी जो है ना वो बड़ा हिकमत वाला इल्म, बड़ा जो है ना वो, यानी नबी अलैहिस्सलाम के इल्म के शहर के ये दरवाजे आप खुद फरमा रहे हैं, इमेजिन करें कि अल्लाह ताला का क्या मुकाम होगा इल्म के अंदर, ठीक है। तो इल्म वाले थे अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सही है। तो जो इल्म वाला होता है तो फिर उसकी अप्रोच जो होती है ना वो थोड़ी आलिमाना किस्म की होती है ना, इल्म और अकल, अकल को साथ इल्म के आप मिला दें तो फिर आप एक लॉजिकल सी बात करेंगे, ठीक है ना, इमोशनल बात आप नहीं करेंगे। इमोशनल बात एक अलग चीज होती है, उसके अंदर अकल और इल्म वगैरह शामिल नहीं होता, ठीक है ना। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात करी ना वो उन्होंने थोड़ी सी इमोशन वाली बात भी थी और थोड़ा अपना तजुर्बा जो उनका था वो भी उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन वो इल्म की गहराई जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थी वो उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास नहीं थी। तो उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे तो थे लेकिन अल्लाह ताला ने उनको छोटेपन में इतनी बहादुरी और इतना इल्म अता फरमा दिया था, ठीक है ना। छोटे तो थे लेकिन वो भी, हाँ छोटे वाली बात भी उनके अंदर थी, क्योंकि वो घर के फर्द भी थे ना, बेटी के शौहर होना और जो है वो घर के मामलात को जानना, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को जानना, ये सारी चीजें अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भी थी। इल्म वाले तो और भी बहुत सारे लोग थे, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत बड़े आलिम दीन थे और दूसरे भी, लेकिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु आलिम दीन भी थे और घर के भी थे, फैमिली के भी थे, अहलोयाल के भी थे, ठीक है ना। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ना फिर अपने इल्म के मुताबिक जो है फिर जरा एक मैटर ऑफ फैक्ट किस्म का, जैसे उन्होंने लिखा था यहाँ पे है ना, एक बड़ा प्लेन सिंपल किस्म की ना एक लॉजिकल सी बात उन्होंने कह दी। तो उन्होंने फरमाया कि भाई नबी अलैहिस्सलाम आप तो अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो आपके लिए एक से एक बीवियां माशाल्लाह नेक परहेजगार और रखी हुई हैं, तो आपके लिए ऑप्शन तो है कि अगर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कोई गलती अगर हो गई है इस किस्म का और आपको बहुत दुख पहुंचाए तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, मतलब यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ लीविंग हर, ठीक है ना। तो आप मुफारकत जो है वो आपके इख्तियार में, ये एक लॉजिकल किस्म के ना बंदे को कन्विंस करने का एक स्टाइल होता है ये, कि आप दूसरा ऑप्शन भी सामने रख दें, लेकिन उससे पहले आप तहकीक कर लें, आप पूछ लें, किससे पूछ लें, जो घर के अंदर मेड रहती है ना, नबी अलैहिस्सलाम के घर में उस वक्त बीवी के साथ एक मेड रहती थी, ठीक है ना, एक काम करने वाली घर में रहती थी खादिमा, उन खादिमा का नाम हजरत नहीं उम्मे मिस्ता खादिमा के तौर पर नहीं, वो तो थी ना दादी, दादी की, बल्कि वो क्या कहते हैं, क्या उन्होंने लिखा भी था, तो खादिमा, खादिमा कौन थी आप बता रहे हैं, खादिमा का नाम था हजरत, नहीं उम्मे ऐमन उस वक्त नहीं थी, हजरत बरीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है। तो वो नबी रसूलुल्लाह के घर में आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ रहती थी। तो अली ने फरमाया कि आप बरीरा रजी अल्लाह अन्हा से जो है ना वो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पूछ लीजिए, ठीक है ना। देखें कितनी पते की बात कही कि भाई बरीरा जो है ना वो उनके साथ दिन रात रहती हैं, बरीरा आपको ज्यादा अच्छा मशवरा दे सकती है मेरे पास उनके बारे में, ठीक है। अच्छा, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को जब बाद में ये बात पता चली ना कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ना जो मेरे बारे में बात कही थी ना वो इस तरह की बात कही थी कि आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन आप जो है वो तहकीक कर लें फिर उसके बाद फैसला कीजिएगा, तो उन्होंने तो एक इल्मी बात करी थी, है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको कहते हैं ना, प्लस माइनस वाली बात, ठीक है ना, वेरी यानी जजमेंटल किस्म का प्लस माइनस का जजमेंट, आप लोग थोड़ा शायद नहीं समझ सकेंगे इस बात को। उन्होंने बड़ी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी थी नबी अलैहिस्सलाम, ऐसा भी हो सकता है आप ऐसा कर लें, ठीक है। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो भी बहुत बड़ी आलिमा थी, मुफ्तियां थी, लेकिन और भी क्या थी, मुफ्तियां बेशक थी लेकिन औरत भी तो थी ना, है ना, सिन्फ नाजुक भी तो थी ना, सिन्फ आन भी थोड़ी थी, सिन्फ आन जो है वो तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आज झूठ बोल रहे हैं सबको, बेवकूफ बना रहे हैं औरतों को कि तुम सिन्फ आहन हो, तुम सिन्फ आहन हो, तुम लोहे की बन जाओ, तुम जो है ना वो टकरा जाओ जा करके और ये करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो, दुश्मन है खाली औरतों को, या खुद अपने आप की दुश्मन बनी हुई है जो किस तरह से समझने की कोशिश करें अपने आप को सिन्फ आहन। अल्लाह ताला ने सिर्फ नाजुक बनाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत जो है ना ये तो आप गिनों की तरह, आप गिने कहते हैं बहुत ही डेलिकेट किस्म, ठीक है ना, क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरत को इमोशंस दिए हैं, जज्बात दिए हैं। आपकी अम्मी आपसे मोहब्बत करती है ना बहुत मोहब्बत करती है, अबू इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि अब्बू के पास वो जज्बात नहीं होते जो कि अम्मी के पास होते हैं। बहन अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती है वो जज्बात की वजह से करती है। माँ जो है वो अपने बेटी बेटे से जो छोटा सा होता है और हर वक्त जो है ना कोई गंदगी कर रहा होता है, कभी कोई खराबी कर रहा होता है, कभी कुछ कर रही होती है, और माँ कितनी मोहब्बत से उसको बर्दाश्त करती है, उसको सफाई करती है, उसको क्या करती है, क्यों करती है, अल्लाह ताला ने उसको जज्बात से भर दिया है, इस वजह से वो इतनी ज्यादा बर्दाश्त के साथ जो है अपने बेटे से मोहब्बत कर रही होती है। हालांकि बेटा उसको मुस्तकिल तंग कर रहा होता है, रात को भी सोने नहीं देता, चिल्ला रहा है, रो रहा है, आपके छोटे भाई साहब दादगिरी कर रहे हैं, राइट, लेकिन अम्मी जो है ना फिर भी उससे मोहब्बत कर रही है, फिर भी उसकी जो है वो सारी चीजें पूरी कर रही है जज्बात की वजह से ना। तो भाई जज्बात जब होते हैं ना किसी के अंदर, तो फिर उसको इस तरह की मैथमेटिकल चीजें अच्छी नहीं लगती है ना। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब लोगों को भी समझनी चाहिए। वो अम्मियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अम्मी जो है ना वो भी हमारी तरह मैथमेटिकल बन जाए। भाई वो उनको औरत रहने दो, वो मैथमेटिकल नहीं बन सकती, वो औरत है, ठीक है ना। आप अगर उनसे मैथमेटिक्स की एक्सपेक्टेशन करें, अच्छा मैथमेटिकल बनने का मतलब ये नहीं होता कि मैथ्स के अंदर आपके 90% मार्क्स आ जाए, इसका मतलब नहीं होता मैथमेटिकल, ठीक है ना। मैथमेटिकल होने का मतलब होता है कि दुनिया की चीजों को जो है ना वो प्लस माइनस जीरो वन इस तरह से देखना शुरू कर देना, ठीक है। इस तरह से ना मर्द देख सकते हैं, औरतें नहीं देख सकती, ठीक है। तो आयशा सिद्दीक रहा था ये बात, ये क्या बात हुई भाई, बजाय इसके कि मैं मुझे फेवर करते, इनको तो ये जवाब देना चाहिए था कि हो ही नहीं सकता है ना, इट्स नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी, जैसे उसामा ने जवाब दिया था, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं जवाब दिया, ठीक है ना। तो इस वजह से आयशा सिद्दीका दानों को अनहा को एक छोटा सा जिसको कहते हैं ना फ्रेंडली एक शिकवा शिकायत सी उनको बाद में भी रहती थी, लेकिन ये शिकवा शिकायत जो है ना ये वो नफरत वाली नहीं थी, बोझ वाली नहीं थी, बल्कि जिस तरह फ्रेंड्स को आपस में होता है कि अच्छा तुमको तू आई 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 एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, तुमने ज्यादा मेरी हेल्प क्यों नहीं करी, तो इस पर थोड़ा सा शिकवा हो जाता है। आयशा सिद्दीका बस इसी तरह का थोड़ा सा एक शिकवा बाद में रहा था, लेकिन ये कोई बुराई इसके अंदर नहीं। जी
अच्छा
कोर्स पढ़ता था, पर्दा सबसे था, हाँ वो नामहरम था, ठीक है। पर्दे का हुक्म लेकिन अभी आया था ना, उससे पहले तो पर्दे का हुक्म नहीं आया था ना, इस वजह से लोगों को जो है वो एक दूसरे के हालात ज्यादा पता होते थे, घर में आना जाना होता था, ठीक है। अच्छा देखिए एक और बात यहाँ पे तो हमने लिखी थी कि ये जो अल्फाज मैं कह रहा हूँ ना, ये अल्फाज भी जो है वो असल में इस किताब में भी लिखे हुए। वो किताब कौन सी है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन, हमारे अकाबिर में से हजरत मौलाना इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब, लिखी हुई किताब, ठीक है। हजरत ने इन बातों को मेंशन भी कर दिया है कि आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु और अली रज़ियल्लाहु के दरमियान एक शिकवा शिकायत वाला मामला हो गया था, लेकिन साथ साथ जो है ना उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिससे कि ये बात भी साबित हो जाए कि कोई नफरत नहीं थी इनके दरमियान, कोई गंदा बुरा काम नहीं किया था, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि हमारे अकाबरीन जो है ना वो अदब को सबसे ज्यादा अहम रखते हैं कि सहाबा कराम के बारे में कोई बेअदबी वाली बात ना हो जाए, कोई गलत बात ना हो जाए, ठीक है ना। जबकि दूसरे लोग इस तरह के वाकया लिखेंगे ना, सहाबा की इज्जत और अदब के बगैर लिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अकाबरीन की किताब भी पढ़नी चाहिए, उसके अंदर से फिर हमें अदब भी सीखने को मिलता है, सही है। तो आयशा सिद्दीका तमाम जो है वो बहरा नबी अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से मशवरा कर लिया, फिर अली रतान के मशवरे को मान करके नबी अलैहिस्सलाम ने फिर किससे जा करके पूछा, याद है किससे पूछा, बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और उनसे कहा कि बरीरा क्या तुम गवाही देती हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पहले कंफर्म कर रहे हैं, हालांकि वो मुसलमान है लेकिन बात करने से पहले दोबारा याद दिलवा रहे हैं, ठीक है। क्या तुम गवाही देती हो कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, बरीरा ने कहा जी बिल्कुल, तो आप सजन ने फरमाया कि मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ठहर जाए, ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम छुपाना नहीं उस बात को मुझसे, अगर तुमने कोई बात छुपाई ना तो अल्लाह ताला ना मुझे वही के जरिए से बता देंगे, ठीक है ना, सूनर और लेटर, अगर अभी वही नहीं आ रही तो बाद में वही आ जाएगी, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बरीरा तआला को जरा साइकोलॉजिकली जरा कर दिया कि डोंट इवन थिंक अबाउट लाइंग टू मी, गलत बयानी करने की कोशिश भी ना करना मुझसे, ठीक है। तो जस्ट टू एश्योर कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह से कहा कि तुम उसे छुपाना नहीं वरना अल्लाह ताला मुझको बजरिया वही बतला देगा। तो बरीरा हज़रत ताला ने फरमाया कि हाँ मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी आपसे, बिल्कुल आपको अल्लाह का नबी मानती हूँ, आप दरियात फरमाए पूछे आप उससे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुमने आयशा से कभी कोई गलत बात देखी है, कोई नापसंदीदा, यानी जिसको कहते हैं ना कैरेक्टर की खराबी है ना, बीइंग हैविंग अ लूज कैरेक्टर, के गलत लोगों से दोस्ती कर लेना या अल्लाह के हुक्म को कभी जो है वो ना मानना, कभी कोई झूठ बोल देना, इस तरह की तुमने कभी कोई नापसंदीदा बात आयशा से देखी है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो सही बुखारी है तो उसके अंदर ये जवाब लिखा हुआ है कि बरीरा दत्ताना ने फरमाया कि अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा दत्ताना ने फरमाया कि बरीरा हल रई रई थी मिन शैइन युरीबुकी, तुमने कभी आयशा में कोई ऐसी बात देखी है कि जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में आयशा के खिलाफ जो है ना कोई शुबा हुआ हो, कोई तरद्दुद हुआ हो, कोई क्या कहते हैं, हाँ जालिकल किताबु ला रईबा शै ला रईबा फीही, ये ऐसी किताब है कि जिसके अंदर कोई रैब कोई तरद्दुद कोई डाउट नहीं है। ये वही रैब वाला लफ्ज है कि जिसने तुम्हें डाउट में मुब्तला किया हो आयशा के बारे में। ठीक है, तो बरीरा तआला ने ना बड़ा जबरदस्त बड़ा प्यारा जवाब दिया, इनोसेंट किस्म का जवाब दिया, जबरदस्त किस्म का। उन्होंने जवाब दिया कि ला वल्लजी बअसका फिल हक, नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की कि जिसने आपको ना सच के साथ हमारे दरमियान खड़ा किया है। ठीक है, मैंने आयशा की कोई बात बुरी नहीं देखी और ऐसी नहीं देखी कि जिसके ऊपर आयशा को रेप्रिमेंड करने की जरूरत पड़े, तंबीह करने की जरूरत पड़ेगी, आयशा नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, गलत बात तुम कर रही हो। ठीक है, कोई ऐसी बात मैंने ये देखी सिवाय इसके कि वो एक छोटी बच्ची है, तमसन लड़की है। ठीक है, उनकी उम्र जो है वो 20 से कम ही थी। ठीक है, छोटी सी बच्ची है वो, तो वो ना घर के अंदर जब रोटी पका रही होती है ना तो रोटी पकाने के लिए पहले आटा गूंदना पड़ता है ना, तो वो आटा जब गूंथती है ना तो उसके बाद जो है ना वो सो जाती है ना, आटा गूंथते गूंथते जो है ना वो आयशा को जो है वो नींद आ जाती है, वो सो जाती है और बकरी का बच्चा आकर के ना उस आटे को खा देता है। यानी दिस इज ऑल आई कैन थिंक अबाउट आयशा, कि जो उनसे गलती होती है कि भाई नहीं सोना चाहिए, अब जब तुमने आटा गूंद लिया है उसका पेड़ा बना करके रखा हुआ है तो पूरी रोटी बना करके फिर उसको किसी पैन वैन के अंदर रख दो, है ना, लेकिन वो जो है ना वो सो जाती है, बकरी बच्चों का बच्चा आकर के आटे को खा जाता है। इसके अलावा और कोई बुरी बात नहीं है आयशा। ठीक है ना, सच्ची बात उन्होंने सच्ची बात बता दी और कोई बात बुरी थी नहीं आयशा जतान के बारे में। ठीक है, यानी इतनी बेचारी सिंसियर और इतनी सिंपलिस्टिक हैं, सिंपल टन कहते हैं इसको इंग्लिश में, इतनी सिंपल टन है, इतनी सादा है कि उस बेचारी को तो आटे और दाल से भी खबर नहीं। ठीक है, तो दुनिया की ये चालाकियां दुनिया की इस तरह की जो है ना वो झूठ और तोहमत वगैरह उसको क्या इन चीजों के बारे में पता होगा ना। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने जब बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मशवरा भी ले लिया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मशवरा ले लिया और उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मशवरा ले लिया, तो अपना नबी अलैहिस्सलाम ने एक स्टैंड ले लिया। इसके बाद अभी वही नहीं आई है लेकिन मशवरा हो गया है और मशवरे के ऊपर आप देखें एतमाद किया अपने सहाबा के ऊपर बरीरा दान के ऊपर, और नबी रसूल ना ये सुन करके फिर निकले अपने घर से, मस्जिद में पहुंचे और मस्जिद में जो है ना वो मिंबर पे खड़े होकर के खुतबा दिया, यानी लोगों को पहले जमा करवाया, सारे लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे खुतबा दिया, या माशर मुस्लिमीन, ए मुसलमानों की जमात। ठीक है, वो कौन है जो मेरी उस शख्स के मुकाबले में मदद करेगा, मेरी मदद करेगा। कौन कह रहा है ये? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जिनको अल्लाह ताला मेराज पे पहुंचा करके जन्नत और जहन्नम दिखला करके सातों आसमान दिखला करके फरिश्तों को दिखला करके बल्कि खुद उनसे कॉन्वर्सेशन करके, और कुछ सहाबा कहते हैं अल्लाह ताला को देख करके ये वापस आ चुके हैं और इनके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, इनको बदर में फतह हो चुकी है, इनको अहद में फतह हो चुकी है। ठीक है, और ये मुसलमानों से कह रहे हैं कौन है जो कि मेरी मदद करेगा। ये बात किसी और ने भी कही थी मजीद में, मन अंसारी इल्लल्लाह कॉल ईसा इब्ने मरियम, है ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही बात कही थी, कौन अल्लाह ताला की खातिर मेरी मदद करेगा। ठीक है ना, तो अल्लाह के नबी भी कहते हैं मेरी मदद करो। ठीक है ना, और अल्लाह के नबी को मदद की जरूरत तो नहीं होती लेकिन भाई तुम मेरी मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह ताला का ये उसूल है। ठीक है ना, तो जब अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी मदद करो, उनको जरूरत होती है ना मदद की। ठीक है ना, यानी कहते हैं अपने लोगों के फायदे के लिए भी कह रहे होते हैं और अपनी भी जरूरत होती है, आजकल के जो उलमाए कराम हैं, जो मशायख उजाम हैं, उनको मदद की जरूरत नहीं होती है ना। हाँ भाई मौली साहब, आप और आपका अल्लाह है ना, जाएं, हम तो इधर ही बैठे हुए हैं, ये किसने कहा था? आप और आपका अल्लाह जाएं, दीन का काम करें, याद करें, हम तो इधर ही बैठे हुए हैं, आपको सबको पता है ये बात, ये बनी इसराइल ने कहा था। क्या हम ये नहीं करते? मौलवी साहब से कहते हैं, मौलवी साहब दीन का काम करें ना, आप करें ना, हम तो इधर बैठे हुए हैं, दादा साहब आपको कुछ टके दे देंगे, और इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। नहीं, ये दीन सिर्फ मौलवी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये दीन सिर्फ जो है ना वो नबी की नहीं भाई, हम ये दीन हमारे लिए है ताकि हम जहन्नुम से बच सकें। वी हैव टू बी फुल्ली फोकस्ड, हमारी सारी तवज्जो, हमारी सारी फिक्रें, हमारा सारा वक्त, अपनी जरूरियात के कोई मना नहीं कर रहा, जॉब भी करें, इल्म भी हासिल करें, स्कूल की पढ़ाई भी करें, सब कुछ करें, लेकिन वकूफ कल्बी दीन की तरफ, दीन की फिक्र, वालेहाना तौर पे दीन की खिदमत करनी है हमें। और दीन की खिदमत का मतलब क्या होता है कि जो उलमा और मशायख होते हैं, इनकी मदद करनी है, इनके साथ मिल करके काम करना है, ठीक है ना, इनको छोड़ नहीं देना कि हम तो इधर बैठे हुए हैं, आप जाकर करें काम, ठीक नहीं, इस तरह से हम नहीं बच सकेंगे, ठीक है। तो फरमाया कि कौन है जो कि उस शख्स के मुकाबले में मेरी मदद करेगा जिसने मुझको मेरे अहले बैत के बारे में ईजा पहुंचाई है ना, मुझे तकलीफ पहुंचाई है उस शख्स ने, खुदा की कसम मैंने अपने अहल से यानी अपने घर वालों से सिवाय नेकी और पाक दामों के कुछ नहीं देखा, और अला हाजा जिस शख्स का उन लोगों ने नाम लिया है इससे भी सिवाय खैर और भलाई के कुछ नहीं देखा, यानी आयशा सिद्दीक से भी भलाई और खैर की कुछ नहीं देखा, और मैं फर्दर वेरिफिकेशन भी कर चुका हूँ, मुझे तो पहले यकीन था लेकिन लोगों की इतनी बातें, इतना प्रोपेगेंडा, ठीक है ना, तो मैंने जो है वो मशवरा भी कर लिया है, घर वाली से भी, खादमा से भी मशवरा कर लिया है, यानी मैंने अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया, ठीक है ना। नाउ आई एम टेलिंग यू, अब मेरी कौन मदद करेगा, इसके बाद फिर एक तफसील मजीद और रहती है इस वाक्य में, तो वो इंशाल्लाह की क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह आपका सवाल रह गया, पूछ के बताऊंगा भाई। नहीं, नबी अलैहि सलाम भी पढ़ देगा ख्याल, ठीक है, तो कर दूंगा। नहीं, शरी हुक्म का मामला जो है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि नबी अलैहि सलाम के ऊपर एक्चुअली पर्दे की पाबंदी नहीं थी, किसी को अगर याद हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी पर्दा किया करते, ठीक है, नहीं थी लेकिन फिर भी पर्दा किया करते थे, किसी औरत को नबी अलैहि सलाम ने हाथ नहीं लगाया, ये जो बैत करते हैं ना, तो बैत जो है उस जमाने में हाथ के ऊपर हाथ रख करके करते थे, ये असल सुन्नत तरीका ही है, नबी अलैहि सलाम औरतों से भी बैत लेते थे लेकिन कभी किसी औरत को टच भी नहीं किया और ना उस औरत को टच करने दिया, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा ख्याल किया करते थे, हालांकि ताला के नबी थे और पर्दे का सुना है मैंने, मुझे एग्जैक्टली इसको याद नहीं, अगर कोई आ सके तो याद नहीं आ रहा, एनीवे और कोई सवाल? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे का कुछ है जरा बैक ऑफ द माइंड कुछ, लेकिन नहीं याद आ रहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, लेकिन है कहीं, मैंने वही मुकीर के बयान अच्छा wants to ask why can't we go inside Kaaba Sharif and why doesn't Allah Taala live inside the Kaaba if it's so जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला does not live inside the Kaaba, ठीक है, अल्लाह ताला की जो नूर होता है ना, जो अल्लाह ताला की लाइट होती है, नूर होता है, वो काबतुल्लाह के ऊपर डायरेक्टली आ रहा होता है अल्लाह ताला के अर्श से, अल्लाह ताला इज ऑन द अर्श, ठीक है, थ्रोन के ऊपर है, थ्रोन से नूर जो है ना वो काबतुल्लाह के ऊपर आ रहा है, इस वजह से काबतुल्लाह को जो है बैतुल्लाह अल्लाह ताला ने कहा है, इस वजह से हम भी उसको बैतुल्लाह कहते हैं, अदरवाइज अल्लाह डज नॉट लिव देयर, एंड व्हाई वी कैन गो इनसाइड काबा, बिकॉज वी आर जस्ट पुअर आवाम, है ना, अगर आप बादशाह बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आप भी काबतुल्लाह के अंदर चले जाएंगे, चाहे जैसे भी, तो काबतुल्लाह के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, वो उसका दरवाजा खुलता है, साल में कई दफा खुलता है बल्कि, और लोग जाते हैं, तो औरतों नहीं जाने के, तो भी ये हमारा मसला नहीं है, चले, ठीक है। ठीक है, फिर क्लास में आते खत्म करते हैं। वाह खुदा।
Recording stopped.